कैसे नंबर 19 यहाँ से शुरू होती है, किताब उनवान अल्लाह के सफीर। ये किताब नाबीना ख्वातीन हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गजाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के सफीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। अपने क्याम के दौरान एक दिन बाबा फरीद ने हजरत अजल शिराजी से दरियाफ्त किया, आपके नजदीक दरवेश कौन है? बाबा फरीद के सवाल पर अजल शिराजी ने हाजरीन की तरफ देखा और बुलंद आवाज में फरमाया, अहले मजलिस गौर से सुन लें कि मैं सिलसिले में वही कहता हूँ जो हजरत जुनेद बगदादी का कौल है। हजरत जुनेद फरमाया करते थे कि अहले दुनिया से रस्म राह रखना और उमराए वक्त से मुलाकातें करना फकीर के लिए कतन हराम है। हजरत अजल शिराजी की खानकाह में हाजिरी के अलावा बाबा फरीद ने बुखारा के मजाफात की भी सैर की। एक दिन आप एक गार में दाखिल हुए जहां एक बुजुर्ग साल हर साल से महवे इबादत थे। बाबा फरीद ने इन बुजुर्ग से भी दुआएं हासिल की और रुखसत होने से पहले दरियाफ्त किया कि आप एक तारीख दुनिया शख्स का लिबास पहनकर सिर्फ इस गार तक क्यों महदूद हो गए हैं? बुजुर्ग ने जवाबन फरमाया, जब दुनिया इंसान को बहुत ज्यादा सताने लगे और इंसान भी महसूस करने लगे कि वो हलाक हो जाएगा तो उसे लाजिम है कि वो शहर से निकलकर जंगलों का रुख करे। मैं भी यही सोचकर इस गार में मुकीद हुआ था, मगर यहाँ भी मुझे दौलत सुकून मयसर नहीं। इतना कहकर बुजुर्ग खामोश हो गए। बाबा फरीद ने दोबारा अर्ज किया, हजरत अपना कोई मुशाहिदा तो बयान फरमाए ताकि ये हकीर आजिज अपने इल्म में इजाफा कर सके। बुजुर्ग ने एक आह सर्द खींची, फरीद मैं जहाँ सोखता तुझसे अपनी रुदात क्या बयान करूँ। 60 साल से इस गार में रहता हूँ, मगर एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जब मुझ पर कोई बला नाजिल ना होती हो, और जिस रोज बला नाजिल नहीं होती तो गरिया जारी करके खुद इसके लिए इल्तिजा करता हूँ। जब मर्जी दोस्त आजमाइश में पोशीदा है तो फिर मैं क्यों ना उसकी आरजू करूँ। फर्जंद तुझे भी बस मेरा यही सबक है कि इंसान को बलाओं पर इस तरह सबर करना चाहिए कि जैसा सबर करने का है। हजरत बाबा फरीद इन बुजुर्ग से मिलकर दोबारा हजरत अजल शिराजी की खिदमत में हाजिर हुए और फिर दूसरे दिन सरजमीन बुखारा को अलविदा कहा। बुखारा के हदूद से निकलकर बगदाद पहुंचे और मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत शेख ने अपने शोरे अफाक तसनीफ अवारुल मारिफ का कुछ हिस्सा बाबा फरीद को खुद पढ़ाया और इसके मतालिब जहन नशी कराए। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की खानकाह में उमरा कीमती तहाइफ और जरे कसीर लेकर हाजिर होते थे, मगर शेख का हुक्म था कि जो कुछ भी आए उसे बिला ताखीर बंदगाने खुदा में तकसीम कर दिया जाए। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी फरमाया करते थे, अगर दौलत की तरफ नजर उठाकर देखा जाए तो अहले दुनिया दरवेश को तोनगरी का ताना देंगे और ये एक बड़ी संगीन तोहमत होगी जिसे दरवेश किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरवेशी तो नाम ही खुद फरोशी का है, सो मैंने अपने आप को बेच दिया है। एक दिन हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की खानकाह में हजरत जलालुद्दीन तिब्रेजी, हजरत ओहदुद्दीन करमानी और हजरत शेख बुरहानुद्दीन सिस्तानी हाजिर थे। बाबा फरीद ने देखा कि हजरत शेख के एक मुरीद ने खरखे खिलाफत की दरख्वास्त की। ये मुरीद एक अरसे दराज से इबादत और रियाजत में मशगूल था और अब उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के दूसरे खलीफा की तरह इस एजाज से नवाजा जाए। मुरीद की इस ख्वाहिश के जवाब में हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने फरमाया, आज मुझे माफ करो, कल किसी वक्त आओगे तो इस मामले पर गौर करेंगे, फिर जो खुदा की मर्जी होगी वही जाहिर हो जाएगा। पीरो मुर्शिद का हुक्म सुनकर मुरीद चला गया। फिर दूसरे दिन वापस आया तो खानकाह के गोशे में सर झुकाकर बैठ गया। अहले मजलिस ने देखा कि मुरीद के चेहरे पर अफसरदगी का रंग नुमाया था। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने मुरीद की तरफ निगाह की और फरमाया, क्या अब भी तुम्हें खरक़े खिलाफत की ख्वाहिश है? रात तुमने ख्वाब में अपनी आंखों से एक पीर और एक मुरीद उसके मुरीद का हशर देख लिया। फरिश्ते इन दोनों को खींचते हुए दोजख की भड़कती हुई आग की तरफ ले जा रहे थे। तुमने अपने इस ख्वाब की हकीकत को समझने की कोशिश की? मुरीद ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बेहिस्सो हरकत सर झुकाए बैठा रहा। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने दोबारा अपने मुरीद को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम समझते हो कि ये इन दोनों का ये ब्रतनाक अंजाम क्यों हुआ? इसलिए कि वो खरके के नाम से दुनिया कमाया करते थे और हर वक्त अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में मसरूफ रहते थे। इसके बाद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने दीगर हाजरीन मजलिस को मुखातिब करते हुए फरमाया, जब तक इंसान का दिल दुनिया की कसाफतों से पाक ना हो जाए उस वक्त तक मुर्शिद पर फर्ज है कि वो किसी शख्स को खरका ना दे और मुरीद के लिए भी लाजिम है कि वो खरका ना पहने। हजरत बाबा फरीद कुछ दिन तक हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की सोहबतों से फैजयाब होते रहे थे। ये वही शहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं जो 549 हिजरी में बमुकाम सोहरावर्द पैदा हुए थे। आपने इमाम मुजद्दुद्दीन से फलसफे और फिक्हे की तालीम हासिल की थी। आप पर फलसफे का रंग गालिब था, इसलिए मुख्तलिफ मजहबी मसाइल में अक्ल व दानिश के सहारे बहस करते थे, जिसका कभी कभी खौफनाक नतीजा बरामद होता था। इस किस्म के बेशतर मनाजरे शहर हल्ब में हुए। बिलाखिर फकहा की एक जमात हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की मुखालिफ हो गई। आपके बाद मुरीदों ने समझाने की बहुत कोशिश की कि अपने नजरियात को एतदाल पर रखें, मगर शेख के दिलो दिमाग मजहब के खास जाविये से मुतासिर हो चुके थे और आपके बयान की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। अंजामे कार इस दौर के चंद मशहूर फकीहों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक मुश्तरका खत में तहरीर किया। यहाँ शेख शहाबुद्दीन नामी एक दरवेश है जिसके उलझे हुए ख्यालात से मुसलमान गुमराह होते जा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है कि अहले ईमान को फौरी तौर पर इस फितने से निजात दिलाई जाए। फकहा की इस शिकायत के जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने बेटे सुल्तान जाहिर को, जो हल्ब का हुक्मरान था, एक खत लिखा। इसमें वाज़ह तौर पर तहरीर किया गया था, हमारी सल्तनत के मशहूर और मोतबर फिका शेख शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दे चुके हैं, इसलिए कैसे दरवेश को जिंदा ना छोड़ा जाए जो लाखों अहले ईमान की जिंदगी से खेल रहा हो। सुल्तानुल ज़ाहिर ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने बाप के हुक्म की तामील की और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी अपने खून में नहा गए। इसलिए तसव्वुफ की बात किताबों में आपको शेख शहाबुद्दीन मकतूल लिखा गया है। इस सिलसिले में एक रिवायत यह है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने नहीं बल्कि इसके बेटे सुल्तान ज़ाहिर ने बराह रास्त शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के कत्ल का हुक्म जारी किया था। जब हजरत शेख को इस हकीकत का इल्म हुआ कि फुकाए हलब कुफर के इल्ज़ाम में आपके कत्ल का फतवा दे चुके हैं, तो आपने सुल्तान ज़ाहिर से दरख्वास्त की, मुझे एक मकान में कैद कर दिया जाए, सुल्तान की तरफ से खाने पीने की चीज़ों का एहतमाम किया जाए, मगर मैं ज़ाती तौर पर एक लुकमा भी अपने हलक से नहीं उतारूंगा, यहाँ तक कि वो दिन आ जाएगा जब शिद्दत नातवानी और भूख मेरे जिस्म को फना कर देगी। इस तरह सुल्तान के हुक्म की भी तामील हो जाएगी और फुकाह की जमात को भी करार आ जाएगा। बाज मोतबर तारीख नवीसों के नज़दीक ये रिवायत मोतबर नहीं है। दरअसल वाकया यही है कि उस जमाने के मशहूर फकीहों ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के बाद अकवाल को कुफर के दायरे में शामिल करके आपके खिलाफ कत्ल का फतवा दे दिया था। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से दरख्वास्त की थी कि इस शख्स के बोझ से जमीन को हल्का कर दिया जाए जिसके अफकार व ख्यालात मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मजीद तहकीक कराए बगैर अपने बेटे सुल्तान ज़ाहिर को हुक्म दिया कि वो मिल्लत इस्लामिया को शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से निजात दिला दे। अलगर्स तसव्वुफ में सिलसिले सोहरावर्दी के बानी को कत्ल कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हजरत बाबा फरीद बगदाद से रुखसत होकर सिस्तान जा चुके थे। कुछ दिन बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन सिस्तान पहुंचे और मशहूर बुजुर्ग हजरत अहदुद्दीन करमानी की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत शेख अहदुद्दीन करमानी रूहानियत में एक बुलंद दर्जे रखते थे, मगर आपको करामत देखने और दिखाने का बहुत शौक था। जब भी कोई बुजुर्ग आपकी खानकाह में दाखिल होता तो शेख किरमानी अपनी करामत का मुजाहरा करते और इस बुजुर्ग को भी मजबूर करते कि वो अपनी रूहानी कुव्वतों का मुजाहरा करे। एक दिन हजरत बाबा फरीद और दूसरे बुजुर्ग मजलिस में बैठे हुए थे कि हजरत अहदुद्दीन करमानी ने तमाम बुजुर्गों से अपनी अपनी करामात दिखाने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर हाजरीन का जवाब का इंतजार किए बगैर खुद ही अली मजलिस को मुखातिब करके फरमाने लगे, यहाँ का हाकिम मेरी बहुत दिलाजारी करता है। आज वो चौगान खेलने के लिए गया हुआ है। अब अल्लाह ही है कि वो हाकिम सही और सलामत वापस आ जाए। अभी मजलिस में हजरत शेख अहदुद्दीन करमानी के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि किसी शख्स ने बाहर से आकर इत्तला दी कि वो हाकिम घोड़े से गिरकर मर गया। मजलिस में मौजूद तमाम बुजुर्ग शेख किरमानी की ये करामत देखकर हैरान रह गए। इसके बाद दूसरे बुजुर्गों ने भी अपनी अपनी करामत का इजहार किया। आखिर में शेख किरमानी ने हजरत बाबा फरीद से कहा, फरीद तुम भी अपनी कोई करामत दिखाओ। बड़ा मुश्किल मरहला था। बाबा फरीद ने नहायत इज्जत इंकिसार के साथ अर्ज किया, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और बुजुर्गों से कुछ सीखने और इनके इनकी खिदमत करने के लिए घर से निकला हूँ। बाबा फरीद अपनी आजिज़ी का इजहार करते रहे, मगर हजरत शेख अहदुद्दीन गरमानी ने आपके किसी उजर को तस्लीम नहीं किया। बिलाखिर बाबा फरीद मजबूर हो गए। आपने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में खुदाबंदे जुलजलाल से दरख्वास्त गुजार हुए, ऐ अपने बंदों की उयूब की पर्दापोशी करने वाले, तुझ पर सब बातिन और जाहिर रोशन है। तू खूब जानता है कि मैं तेरा एक गुनाहगार बंदा हूँ, मगर इन लोगों के दरमियान बैठा हूँ जो बेशुमार कमालात रूहानी रखते हैं। मेरी जात में ना कोई करामत पोशीदा है और ना मैं करामत के इजहार को मुनासिब समझता हूँ। फिर भी मेरे सर से इन कड़े लम्हात को टाल दे और मुझ में इन हुनर को इन हजरात के सामने सुरखरू फरमा दे जो अहले इल्म भी हैं और अहले कमाल भी। अभी बाबा फरीद ख्यालों ही ख्यालों में अपने रब के हुजूर दस्त बदुआ थे कि यकायक तस्वुरात के पर्दे पर आपके पीरो मुर्शिद हजरत कुतुब का चेहरे मुबारक रोशन हो गया। हजरत कुतुबुद्दीन मख्तियार काकी फरमा रहे थे, बाबा फरीद आजुर्दा क्यों होते हो? जिस खुदा ने तुम्हें सुल्तानुल हिंद के आस्तान आलिया तक पहुंचाया है, वही हर हाल में तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेगा। इन बुजुर्गों से कहो कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, फिर इन्हें तुम्हारी करामत नजर आ जाएगी। इन अल्फाज के साथ ही हजरत कुतुब का पुर नूर चेहरा बाबा फरीद की नजरों से ओझल हो गया। आपने घबरा कर आंखें खोल दी। शेख अहदुद्दीन करमानी ने बाबा फरीद की यह कैफियत देखी तो फरमाया, फरीद खामोश क्यों हो? क्या अभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचे हो? मंजिल तो मेरी बहुत दूर है, मगर आप हजरात अपनी आंखें बंद कर लें, फिर देखें कि खुदा क्या जाहिर करता है। शेख किरमानी और दूसरे बुजुर्गों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। यकायक तमाम बुजुर्गों ने देखा कि वो सिस्तान की बजाय खाने काबा में मौजूद हैं। खुद बाबा फरीद भी इन दरवेशों के साथ बैतुल्ला में मौजूद थे। कुछ देर बाद जब तमाम दरवेशों ने आंखें खोली तो नजरों के सामने शेख किरमानी की खानकाह थी और हाजरीन मजलिस खामोश बैठे नजर आ रहे थे। हजरत शेख अहदुद्दीन करमानी ने बेख्तियार होकर फरमाया, फरीद इस नौमरी में तुम्हें यह आला मुकाम मुबारक हो। शेख किरमानी के साथ दूसरे दरवेश भी बाबा फरीद के रूहानी तसर्रुफ का इतराफ कर रहे थे, मगर बाबा फरीद की नजरें झुकी हुई थी और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप कैसे बताते ये सब कुछ क्या था, किसकी दुआओं का असर था और किसके फजलो करम की करिश्मा साजी थी? सिस्तान से रुखसत होकर बाबा फरीद बदख्शां तशरीफ ले गए। यहाँ आपकी मुलाकात मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल वाहिद से हुई। हजरत शेख अब्दुल वाहिद मशहूर सूफी हजरत जुलनून मिस्री के मुरीद थे। हजरत शेख अब्दुल वाहिद इश्क़े खुदावंदी से इस कदर सरशार थे कि अहले दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। इसी बेनियाजी और कलंदरी के सबब आप शहरी हुदूद से निकलकर एक गार में मुकीम हो गए थे। जब कोई दुनिया परस्त हजरत शेख अब्दुल वाहिद खिदमत में हाजिर होता और अपने किसी काम के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त करता तो हजरत शेख नहायत तस लहजे में फरमाते, तुम कब तक इस मुर्दार दुनिया के पीछे भागते रहोगे? क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे और इस भड़कती हुई आग से बचने की कोशिश करे जिसका ईंधन इंसान है? तुम मेरे पास इसलिए क्यों नहीं आते कि मैं तुम्हारे हक में अपने अल्लाह से आफियत तलब करूं? तुम मेरे पास दुनिया मांगने के लिए आते हो तो गौर से सुन लो कि दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने सयाहकार और करीहुल मंजर औरत को तलाक दे दी है। जाओ, किसी और के दरवाजे पर जाओ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा फरीद जानते थे कि हजरत शेख अब्दुल वाहिद मुलाकातियों से बेजार रहते हैं, फिर भी एक खुदा रसीदा बुजुर्ग का शौक दीदार आपको इस गार तक ले गया जहां सन्नाटे और वीरानी के सिवा कुछ नहीं था। जैसे ही बाबा फरीद ने डरते डरते गार के दरवाजे में कदम रखा एक तेज आवाज गूंजी, ए जान सोख्ता इश्क, इधर आ कि तुझ पर मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बाबा फरीद ने अंदाजे से पहचान लिया कि ये हजरत शेख अब्दुल वाहिद की आवाज थी। बाबा फरीद गार के अंदर पहुंचे तो आपने एक नहीं वो नजार शख्स को देखा जो बजाहिर हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था और जिसकी एक टांग कटी हुई थी। बाबा फरीद आगे बढ़ते रहे मगर जब गार के दरमियान में पहुंचे तो हजरत शेख अब्दुल वाहिद की आवाज दोबारा सुनाई दी। आप नहायत पुरजलाल लहजे में फरमा रहे थे, फरीद मेरे करीब हरगिज ना आना कि जलकर खाक हो जाएगा, और मुझसे दूर भी ना रहना कि तुझ पर जादू का असर हो जाएगा। बाबा फरीद पर इस मर्द जान सोख्ता की इस कदर हैबत तारी हुई कि बढ़ते हुए कदम रुक गए। वहीं खाक पर बैठ जा कि तू मेरा मेहमान है और मेरी मेजबानी यह है कि मैं अपने मेहमानों को खाक के सिवा कुछ नहीं देता, और मेरे पास खाक के सिवा है भी क्या कि मैं खुद ही खाक हो चुका हूँ। बाबा फरीद ने इस मर्द कलंदर की खिदमत में सलाम पेश किया और बड़ी खुश दिली के साथ फर्श खाक पर बैठ गए। गार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बाबा फरीद ने अर्ज किया, शेख इश्क खुदावंदी क्या है? मुझे देख के मैं इश्क की अदना तरीन मिसाल हूँ। हजरत शेख अब्दुल वाहिद ने जवाबन फरमाया, मेरे जिस्म पर नजर करके ये आतिशे फराक में बूंद बूंद पिघल रहा है। बस कुछ दिनों की बात है कि ये पिघलते पिघलते खाक में जज्ब हो जाएगा। मेरे पैरों की जानिब देख कि मैं एक टांग से महरूम हूँ। मुझे दुनिया को तलाक दिए हुए पौन सदी गुजर चुकी है। मैं 70 साल से इस गोशे तन्हाई में पड़ा हूँ और मैंने तमाम असबाबे जाहिरी की नफी कर दी है। बहुत दिन पहले इस गार में एक औरत आई थी। इसके हुस्न फरेब कार को देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी गार से बाहर चला जाऊं, मगर जैसे ही कदम उठाया एक गैबी आवाज ने मेरे पैरों में हमेशा के लिए जंजीर डाल दी। कहने वाला कह रहा था, कहाँ जा रहे हो? मोहब्बत का दावा तो हमसे किया था। मैं वापस लौट आया और फौरन अपनी एक टांग काट कर फेंक दी। अब 30 साल से शर्मो निदामत की आग में झुलस रहा हूँ। कयामत के दिन अपने दोस्त को ये चेहरा किस तरह दिखाऊंगा? हजरत शेख अब्दुल वाहिद की दास्तान हयात सुनकर बाबा फरीद इस कदर रोए कि आपकी हिचकियां बन गई। फिर खुद कलामी के अंदाज में फरमाने लगे, फरीद तुझे क्या पता कि इस सरजमीन पर इसके कैसे कैसे जान निजार मौजूद हैं। बाबा फरीद हजरत शेख अब्दुल वाहिद के साथ 1 हफ्ते तक इस गार में मुकीम रहे। आपके लिए बात शदीद हैरत का बाइस थी कि बज़ाहिर कोई शख्स नजर नहीं आता था, मगर रात के वक्त खाने के लिए दूध और खजूरें मौजूद होती थी। कुछ दिन बाद बाबा फरीद बदख्शां से रुख्सत होना चाहते थे। आपने हजरत शेख अब्दुल वाहिद से इजाजत तलब की। जवाबन हजरत शेख ने सुकूत इख्तियार किया। बाबा फरीद ये सोचकर खामोश हो गए कि अभी शेख की मर्जी नहीं है। फिर नस शब गुजर जाने के बाद हजरत शेख अब्दुल वाहिद ने बाबा फरीद को मुखातिब करके फरमाया, फरीद तू भी चला जाएगा? शेख के लहजे से दिल का दर्द झलक रहा था। हाँ, सब कुछ जाने के लिए है। किसी को दवाम नहीं, किसी को करार नहीं, और किसी को बताते नहीं कि सब मंजिल दो मंजिल के साथी हैं। बस जुदाई और तन्हाई ही अपने हमदर्द और गमगुजार हैं। शेख मोहतरम, अगर आप हुक्म दें तो कुछ दिन और ठहर जाऊं। बाबा फरीद ने मुअद्दिबाना अर्ज किया, चंद रोज क़याम से क्या होगा? जुदाई की मंजिल तो सर पर खड़ी है। हजरत शेख अब्दुल वाहिद बहुत उदास और दिल गिरफ्तार नजर आ रहे थे। हर तरफ अलफिराक अलफिराक की आवाजें गूंज रही थी। तुझे भी जाना होगा, तेरे सफर इश्क का तो अभी आगाज हुआ है, अभी उसका अंजाम कहाँ? मुझे असीर गम की तरफ ना देख कि मैं तो अजल से कैदी हूँ। यही तारीख गार मेरा मकान है, यही मेरी खलबत है और यही मेरी अंजुमन है। तू हरगिज गोशा नशीनी इख्तियार ना करना कि बंदगाने खुदा का हुजूम तेरा मुंतजर है। मैं तुझे अपनी दुआओं के साए में रुख्सत करूंगा, बस एक रात और ठहर जा। इतना कहकर हजरत शेख अब्दुल वाहिद मुराकबे में चले गए और बाबा फरीद जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। सुबह सूरज तुलू हुआ तो बाबा फरीद ने हजरत शेख अब्दुल वाहिद से इजाजत तलब की। हजरत शेख ने एक नजर बाबा फरीद की तरफ देखा और फिर गमजदा लहजे में फरमाने लगे, फरीद तू मुझे बहुत पसंद है, तुझे अपना दोस्त बना लेता, मगर क्या करूं कि किसी और की दोस्ती का दम भर चुका हूं। अपने इस अहद को तोड़ नहीं सकता, अगर ऐश नहीं करूंगा तो हलाक हो जाऊंगा। फिर भी तू मेरे दिल से दूर नहीं रहेगा, जब तक जिंदा रहूंगा अपने अल्लाह से तेरे लिए आफियत तलब करता रहूंगा। ये कहकर हजरत शेख अब्दुल वाहिद बेसाखी के सहारे खड़े हुए, फिर बाबा फरीद को सीने से लगा लिया। इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए बाबा फरीद बयान करते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा जिस्म जल उठा हो। यह हजरत शेख अब्दुल वाहिद का सोज इश्क था जो नजदीक आने वालों को भड़कते हुए शोलों की मानिंद महसूस होता था। बाबा फरीद की अजीब हालत थी। हजरत शेख अब्दुल वाहिद आपको सीने से लगाए हुए फरमा रहे थे, फरीद हम तो खानमा बर्बाद हैं, ना हमारी कोई मिल्कियत है और ना कोई जागीर, बस सोज़-ए-नहा की एक मीरास है जिसने हमें जला कर खाकतर कर दिया है। एक चिंगारी तेरी नजर भी किए देता हूँ, इस चिंगारी के बगैर दरवेश दरवेश नहीं होता, नेकियों और इबादतों का सौदागर बन जाता है। बस अब जा कि तेरी मंजिल बहुत दूर है। अल्लाह तेरे कदमों को इस्तकामत बख्शे और तेरे सर पर हमेशा इसकी रहमत साया फिगन रहे। अगर कभी तुझे ये जान सोख्ता याद आए तो उसके हक में भी दुआए खैर करना कि आग बुझने ना पाए, यहाँ तक कि तमाम आजा दिल दिमाग और रूह जलकर खाक हो जाएं और फिर ये खाक कूचे यार में बिखर जाए और इसे तेज हवाएं दर बदर उड़ाती फिरें। इतना कहकर हजरत शेख अब्दुल वाहिद जमीन पर बैठ गए। बाबा फरीद तारी गार से निकल आए मगर इस तरह कि आपके कदम थके थके थे और आंखों से आंसू जारी थे। बाबा फरीद को हजरत शेख अब्दुल वाहिद से बिछड़ने का बहुत गम था मगर मजबूर थे कि अभी आपकी मंजिल बहुत दूर थी। बाबा फरीद ने बख्शा को खैर बात कहा और चश्त की तरफ रवाना हो गए। ये वही मुकाम है जिसकी नस्बत से सिलसिले चिश्ती अपनी शोहरत दवाम हासिल की है। यहाँ पहुंचकर बाबा फरीद ने हजरत यूसुफ चिश्ती के रोज़े मुबारक की ज्यारत की। हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती का शुमार सिलसिले चिश्ती के नामवर बुजुर्गों में होता है। अगर हम इस मौके पर मुख्तसरन पीराने चिश्त का शिजरा बयान कर दें तो यकीनन कादीन की मालूमात में एक ग्रां कदर इजाफा होगा। सिलसिले चिश्तिया का आगाज अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से होता है। मशहूर रिवायत के मुताबिक हजरत अली करम अल्लाह वजू ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी को खिरक़े खिलाफत अता किया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी को बरसगीर पाको हिंद के बेशतर लोग महज एक सूफी बुजुर्ग की हैसियत से जानते हैं मगर जिनकी निगाहें तारीख आशना हैं वो इस राज से भी वाकिफ हैं कि हजरत हसन बसरी एक अजीब मुहद्दिस थे और दर्जे इमामत पर इस तरह फाइज थे कि इमाम आजम हजरत अबू हनीफा और हजरत इमाम मालिक भी आपका बहुत एहतराम करते थे। हजरत हसन बसरी को तमाम औलिया कराम के दरमियान ये शर्फ हासिल है कि आपकी वालदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की कनीज थी। बचपन में जब हजरत हसन बसरी की मादरे ग्रामी किसी काम में मसरूफ होती और आप रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन आपको गोद में उठाकर अपना दूध पिला देती। हजरत इमाम नोवी फरमाते हैं हजरत हसन बसरी के कलाम में जो गैर मामूली वजाहत और हिकमत पाई जाती है वो सब इसी मुकद्दस शीर ख्वारगी का सबका था। हजरत हसन बसरी को हजरत उम्मे सलमा के ताल्लुक से दूसरी अजवाज मुताहरात के घरों में भी आने जाने का मौका मिलता था। विलादत के बाद जब आपको अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की खिदमत में पेश किया गया तो मुसलमानों के अजीम और जलील खलीफा ने बेख्तियार फरमाया, ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका नाम हसन रखो। हजरत हसन बसरी को 120 सहाबा कराम की खिदमत में हाजिर होने का शर्फ हासिल था। उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा ने आपकी तरबियत की और हमेशा यही दुआ करती रहीं कि अल्लाह हसन को दुनिया का रहनुमा बना दे। हजरत इमाम हसन बसरी की जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाकयात पेश आए हैं जो तारीख के औराक पर नक्श होकर रह गए हैं। एक बार हजरत इमाम हसन बसरी की मजलिस से दर्स आरास्ता थी। आप निहायत शीरी और पुरजोश लहजे में मार्फत के रुमूज और इसरार बयान फरमा रहे थे कि अचानक हाजरीन मजलिस पर सकता तारी हो गया। हजाज बिन यूसुफ अपने सिपाहियों और शमशीर बिनयाम के साथ हजरत इमाम हसन बसरी के मकतब में दाखिल हुआ। इस सितमपेशा और जफाकार इंसान को देखकर लोगों की आंखें पथरा गईं और सांसें रुकती हुई सी महसूस होने लगीं। बेशतर हाजरीन मजलिस हजाज बिन यूसुफ के खौफ से खड़े होकर सोचने लगे कि आज हसन बसरी का इम्तिहान है। वो हजाज की ताजीम के लिए खड़े हुए हैं या दर्स में मशगूल रहते हैं। लोग अपने अपने जहन के मुताबिक सोचते रहे مگر حضرت امام حسن بصری نے والی عراق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے دنیا کا شفاق ترین انسان کھڑا ہے۔ بالآخر جب حضرت امام حسن بصری کا واز ختم ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے پکار کر کہا، اگر تم کسی مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کا چہرہ دیکھ لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تربیت یافتہ یہی وہ حسن بصری ہیں جن سے سلسلہ چشتیہ کو دنیا میں فروغ حاصل ہوا۔ آپ نے زندگی بھر دولت و اقتدار کی نفی کی اور پھر 4 محرم 111 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب حضرت امام حسن بصری دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو خرقہ خلافت عطا کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اس عظیم امانت کی حفاظت کرنا، ورنہ بروز حشر اللہ کے سامنے بڑے شرمسار ہوگے۔ واضح رہے کہ یہ وہ شیخ عبد الواحد نہیں ہے جن سے بدخشاں کے ایک تاریخ غار میں حضرت بابا فرید نے ملاقات کی تھی۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید 177 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے اس عالم خاکی کو الوداع کہا تو سلسلہ چشتیہ کی یہ امانت حضرت فضیل بن نیاز کو منتقل ہو گئی۔ حضرت فضیل بن نیاز کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ افریقہ میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ روایت ہے کہ آپ اپنے اہل شباب میں رہزنوں اور قزاقوں کے سردار تھے۔ پھر جب ہدایت غیبی نصیب ہوئی تو اولیاء کی سرداری کے منصب پر فائز ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید آپ کے بارے میں کہا کرتا تھا، حقیقتاً بادشاہ تو فضیل بن ایاز ہیں۔ پھر 187 ہجری میں یہ شہنشاہ معرفت زیر خاک ہو گیا، مگر جانے سے پہلے خرقہ خلافت حضرت ابراہیم بن ادھم کو منتقل ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے حکمران تھے، مگر جب آتش عشق نے آپ کے دل و دماغ کو جلا ڈالا تو تاج و تخت کو چھوڑ کر قصر شاہی سے یہ کہتے ہوئے نکل آئے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بے شمار دلوں کا میل دھو کر اور لا تعداد ذہنوں کی کثافت دور کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم 265 یا 267 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات سے چند روز پہلے آپ نے حضرت حذیفہ مرعشی کو خرقہ خلافت پہنایا اور نہایت وسوز لہجے میں تلقین فرمائی، حذیفہ میں تجھے جو لباس پہنا رہا ہوں وہ بہت حساس اور نازک ہے، ریاکاری کے پتھر سے شیشے کی قبا کو محفوظ رکھنا ورنہ ایک کنکری سے یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اسے غلاظت سے بچانا کہ ساری دنیا گناہوں کا تالاب ہے جس کا پانی گلی گلی اور کوچے کوچے بہ رہا ہے۔ بہت احتیاط سے قدم اٹھانا کہ اس کثیف پانی کی ایک چھینٹ پورے لباس کو داغدار کر دے گی۔ حضرت حذیفہ کا خاندانی نام خواجہ سدید الدین تھا۔ آپ مرعش کے رہنے والے تھے جو شام کے قریب ایک آباد شہر ہے۔ اس شہر کی نسبت سے آپ مرعشی کہلاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے 7 سال کی عمر میں نہ صرف قرآن کریم حفظ کر لیا تھا بلکہ 7 مشہور قراتوں میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ کا طریقہ تھا کہ جس درویش سے بھی ملاقات کرتے اسے اپنے حق میں دعائے خیر کراتے۔ حضرت فضیل بن نیاز اور حضرت با یزید بستامی نے حضرت حذیفہ مرعشی کو بچپن میں ایک بار دیکھا تھا۔ حضرت با یزید بستامی نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا تھا، حذیفہ مرد خدا ہیں اور جوان ہو کر بہت سے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ حضرت حذیفہ مرعشی نے پیرانی چشت کا خرقہ حضرت حبیرہ بصری کو منتقل کیا اور عالم خاکی سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت حبیرہ بصری نہایت عالم و فاضل بزرگ تھے۔ آپ کو ناصر شریعت اور امام طریقت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حبیرہ بصری نے سلسلہ چشتیہ کی یہ امانت حضرت شیخ محشاد الود دینوری کے سپرد کی اور سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ محشاد ایک امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر جب آپ درویشی کی طرف راغب ہوئے تو ساری دولت محتاجوں میں تقسیم کر دی، یہاں تک کہ اپنے افطار کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہ رہنے دی۔ تمام سرمایہ لٹا دینے کے بعد حضرت شیخ نے دست دعا دراز کیا اور نہایت رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میرے اور تیرے درمیان جو ہلاک کر دینے والی شے حائل تھی میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا، اب مجھے تیری رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ 14 محرم 299 ہجری کو معرفت کا یہ آفتاب ضیاء بعد بجھ گیا، مگر غروب ہونے سے پہلے حضرت شیخ محشاد نے پیرانے چشت سے حاصل کردہ روشنی حضرت ابو اسحاق چشتی کو منتقل کر دی۔ حضرت ابو اسحاق چشتی شام کے رہنے والے تھے اور یہ پہلے بزرگ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ چشتی کا لفظ نظر آتا ہے۔ चिश्त खुरासान के एक मशहूर कस्बे का नाम है। इस कस्बे में कुछ बुजुर्गान दीन ने रूहानी तरबियत का एक बड़ा मरकज कायम किया था। केसेट नंबर 19 का यहाँ इख्तिताम होता है। बकिया किताब अब आप केसेट नंबर 20 में समाप्त फरमाइए।